శ్రీల ప్రభుపాదికి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతీ ఉత్తమశ్లోకే భక్తిర్భవతి నైశ్చికీ. శ్రీమద్భాగవతం స్కంద 9 అధ్యాయ 24 శ్లోక సంఖ్య 61. కలౌ దుఃఖ జనయిష్యమానానాం దుఃఖ శోక తమః ముదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోత్ యశః. కలౌ జనయిష్యమానానాం కలౌ జనయిష్యమానానాం దుఃఖశోకతమోనుదం దుఃఖశోకసంతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోత్యశః సుపుణ్యం వ్యతనోత్యశః. కలౌ జనయిష్యమానానాం కలౌ జనయిష్యమానానాం దుఃఖశోకతమోనుదం దుఃఖశోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశః సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశః. కలౌ జనయిష్యమానానాం దుఃఖశోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోత్యశః కలౌ జనయిష్యమానానాం దుఃఖశోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోత్యశః కలౌ జనయిష్యమానానాం దుఃఖశోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశ కలౌ జనయిష్యమానానాం శోకతమోనదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశ. కలోజనేశ్వరాణాం దుఃఖశోకాతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశ. శోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశ. కలోజనేష్యమాణానాం దుఃఖశోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం సుపుణ్యం వ్యతనోద్యశ. కలోజనేష్యమాణానాం దుఃఖశోకతమోనుదం అనుగ్రహాయ భక్తానాం. शब्दार्थ इस प्रकार है, कलौ कलयुग में जनेष्यमाणानाम ऐसे बद्ध जीवों का जो भविष्य में जन्म लेंगे, दुख शोक तमः दुख शोक तमोनुदः उनके असीम दुख तथा शोक के शोक को कम करने के लिए जो अज्ञान के कारण उत्पन्न है, अनुग्रहाय दया दिखाने के लिए भक्तानाम भक्तों के प्रति सुपुण्यम अत्यंत पवित्र दिव्य कार्यकलाप यतनोत विस्तार किया, यशः महिमा या ख्याति. अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्री प्रभुपाद की जय. अनुवाद. भगवान ने कलयुग में आगे जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनके स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा. दूसरे शब्दों में उन्होंने इस तरह कर्म किया है जिसे सारे सभी भक्तजन भगवद्गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके संसार के कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं, पा सकेंगे. तात्पर्य भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध. भगवान के दोनों ही कर्म सारा चलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां. कृष्ण वस्तुतः साधुओं या भक्तों के उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखाते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के हाथों से मरता है उनके उन को मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव भगवान चाहे मारे या रक्षा करे, वे असुरों तथा भक्तों दोनों पर ही दयालु होते हैं। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाप चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन प्रलये स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवा स्कंद भी पूर्ण होने को आ रहा है। उसमें 67 श्लोक है, 67 आखिरी श्लोक है। अभी 61वां श्लोक में है और 6 श्लोक बचा हुआ है। तो नवा स्कंद का जो आखिरी ये श्लोक है, ये कृष्ण के बारे में वर्णन किया जा रहा है। वैसे कृष्ण जो है आश्रय तत्व है, भागवतम के 10 विषय वस्तु है। अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानम पोषण उदयः मन्वंत्रेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय। दशमश्च विशुद्ध्यर्थं नवानां विलक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चाञ्जसा। ये 10 विषय वस्तुओं का भले ही भागवत में वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आश्रय तत्व। आश्रय तत्व का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जो सारे जीवों का आश्रय है, सारे जीवों का ही नहीं, सारे जड़ संसार का भौतिक जगत का भी आश्रय है, सारे शक्ति तत्वों का भी आश्रय है और सारे विश्व तत्वों का भी आश्रय है। इसकी वजह से ये दशमश्च विशुद्ध्यर्थम, ये जो दसवां विषय वस्तु है आश्रय तत्व, उसका विशुद्ध्यर्थम, उनका अर्थ को और विशुद्ध रूप में प्रकाशित करने के लिए नवानाम यह लक्षणम, नौ लक्षणों का वर्णन किया गया है। भागवतम का मुख्य उद्देश्य नौ विषय वस्तु नहीं है। भले ही 10 विषय वस्तुओं का वर्णन हुआ है, पहले के 9 विषय वस्तु भागवत के मुख्य विषय वस्तु नहीं है। ये 9 विषय वस्तुओं का वर्णन केवल 10वां विषय वस्तु यानी भगवत तत्व या कृष्ण को वर्णन करने के लिए हुआ है। यानी दूसरे शब्दों में जब भागवतम का शुरुआत हुआ, यानी पहला स्कंद पहला श्लोक से लेकर अभी 9वां स्कंद का ये आखिरी के श्लोकों तक केवल तैयारी हो रही है। किसकी तैयारी हो रही है? हमारी चेतना की तैयारी हो रही है ताकि हम 10वां स्कंद में प्रवेश कर सके। यज्ञ के क्रिया में ऐसा कहा जाता है, उसको पूर्वांग क्रिया कहा जाता है। पूर्वांग क्रिया का अर्थ क्या है? आपको यज्ञ का अर्थ क्या है? स्वाहा करना, स्वाहा स्वाहा यज्ञ। लेकिन वो कार्य करने से पहले, आहुति करने से पहले बहुत सारे कार्य करना पड़ता है। कलश की प्रतिष्ठा करना पड़ता है, अनेकों अनेकों चीजें करना पड़ता है, वो भी यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। लेकिन वो सब करने के बाद को क्या करना, आहुति करना है, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए अन्य क्रिया किया जाता है, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 10वां विषय वस्तु जो है वो भागवत का मुख्य विषय वस्तु है। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि नारद व्यास संवाद में प्रसंग आता है। नारद जी ने व्यास जी को कहा कि आपका दुख का या शोक का कारण यह है कि आपने कृष्ण लीलाओं को वर्णन नहीं किया, तो आप ऐसा ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर केवल भक्ति का गुणगान हो, जहां कृष्ण लीला का ही वर्णन हो। तब ऐसा नारद जी ने व्यास देव को कहा, तो व्यास देव ने ये 9 स्कंदों को रचना कर किया क्यों किया? क्योंकि व्यास देव को मालूम था कि अगर सीधे 10वां स्कंद को वर्णन किया जाए, जैसे श्री राधा भगवान की जगन्नाथ, अगर सीधे 10वां स्कंद को वर्णन किया जाए तो क्या होगा, लोगों की चेतना तैयार नहीं है ये 10वां स्कंद के अंदर प्रवेश करने के लिए। 10वां स्कंद की तैयारी क्या है, चेतना किस प्रकार होना चाहिए? हमारी चेतना में वैराग्य होना चाहिए, हृदय में वैराग्य के बिना कोई भी व्यक्ति 10वां स्कंद के कृष्ण लीलाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके मन में बहुत सारे भौतिक आसक्ति हैं, जब वो अगर कृष्ण लीला को सुने या वर्णन करे तो वो एक कहानी के रूप में होगा, लेकिन उसका वास्तविक आस्वादन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन 9 स्कंदों का वर्णन पहले किया गया है। अभी 9 स्कंद का अंतिम भाग में कृष्ण लीलाओं का परिचय दिया जा रहा है। वैसे पूरा कृष्ण लीलाओं का परिचय या 2 श्लोकों में किया है, यानी 66th और 67th वर्स। लेकिन कृष्ण लीलाओं का ये सार रूप में 2 श्लोकों को वर्णन करने से पहले कृष्ण का महिमा का वर्णन हो रहा है, यानी कृष्ण प्रकट हुए तो वो क्यों प्रकट हुए और किस कारण से प्रकट हुए और प्रकट होके उनका उद्देश्य क्या था और वो प्रकट होने की वजह से हमारी क्या फायदा होने वाला है, ये सब चीजों का वर्णन पिछले 3 श्लोकों से हो रहा है। जब वसुदेव के 8 पुत्रों का नाम उच्चारण किया तो 8वां पुत्र का नाम लेते ही, कृष्ण का नाम लेते ही तुरंत 10वां स्कंद पूरा शुरू होता है, यह 9वां स्कंद का अंतिम भाग और 10वां स्कंद शुरू होता है। अभी ये 61वां श्लोक है, 61वां श्लोक का पहले है 60वां श्लोक, तो 60वां श्लोक का तात्पर्य नहीं है, पहले उसका करेंगे। तो 60वां श्लोक में कहा गया है, कर्मण अपरिमेयानि मनस्याप्य सुरेश्वरी संकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन। कर्माणि अपरिमेयानि, भगवान की जो कर्माणि, भगवान की कार्य मतलब लीलाएं उनके, वो कैसा है, अपरिमेयानि, अपरिमेयानि मतलब अमेय, परिमेय तब जो माप नहीं सकते, इमेजरेबल, जिनको माप नहीं सकते इनको अपरिमेय कहा जाता है, जिसको हम माप सकते हैं इनको परिमेय, प्रमाण, प्रमेय, जिनको हमारी कल्पना के अनुसार सोच सकते हैं। भगवान की लीला जो हमारी कल्पना से परे है, अचिंत्य है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किया भगवान ने, गोवर्धन लीला को धारण करना और इतने सारे असुरों को वध करना, ये सब चीजें अपरिमेयानी, कर्माण्य अपरिमेयानी, इमेजरेबल आनंद है। तो कैसा है वो, मनस्या परिमि सुरेश्वरी, वो किसके लिए अपरिमेय है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सुरेश्वरी, सुरेश्वरी की अर्थ क्या कि ब्रह्मा और शिव जी ऐसे जो महान लोग हैं, महान जो देवता हैं, उनके लिए भी अपरिमेय। हम देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला, 2 बार ब्रह्मा जी विमोहित हो गए भगवान की लीलाओं में और शिव जी भी विमोहित हो गए। तो इसलिए कहा गया है कि मनस्यापि सुरेश्वरी सह संकर्षण चक्रे भगवान मधुसूदन, और उन्होंने लीलाएं कैसे संपन्न किया, सह संकर्षण चक्रे, सह संकर्षण का अर्थ क्या है, संकर्षण जी के साथ में उन्होंने लीलाएं की, संकर्षण मतलब बलराम। तो जो भी भगवान प्रकट होते हैं उनका जो प्रथम विस्तार है, बलराम जी प्रकट होते हैं, जैसे रामचंद्र के रूप में आए तो लक्ष्मण, तो जब भी आते हैं तो बलराम जी के साथ में आते हैं, क्योंकि बलराम जो है वो भगवान की सारे जितने भी क्रियाएं हैं उसको संपन्न करने वाले हैं। क्रिया का अर्थ क्या है, जो लीलाओं की सुविधाओं को प्रदान करने की सारा कार्य बलराम जी करते हैं, तो इसलिए सहसंकर्षण ही चक्रे भगवान मधुसूदन, और उन्होंने अनेकों अनेकों कार्य किया। कौन किया? भगवान मधुसूदन, भगवान को मधुसूदन कहा गया जो मधु नामक राक्षस को उन्होंने वध किया। तो कृष्ण का नाम है मधुसूदन। तभी प्रश्न उत्पन्न हुआ इधर कि भगवान प्रकट होकर अनेकों अनेकों कार्य किए और जिसकी वजह से उस समय के जितने भी लोग हैं उनको बहुत आनंद प्रदान किए, उनको उद्धार किए। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारा कितना दुर्भाग्य, देखो भगवान तो प्रकट हो गए, अगर भगवान की लीलाएं जब कर रहे थे उस समय होता तो हमारा भी उद्धार हो जाता, अभी क्या करें। तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का संदेह को मन से दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। क्या संदेह था लोगों के मन में? जब भगवान प्रकट होकर लीलाएं किए और उन्होंने अनेकों लोगों को उद्धार किया और भक्तों ने बहुत आनंद लिया, तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य, क्यों? क्योंकि भगवान अप्रकट होने के बाद हमारा प्रकट हुआ, हमारा प्रकट, हमारा जन्म हुआ, तो इसलिए हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, हमारा भी उतना ही सौभाग्य है जितना भगवान की प्राकट्य के समय जो लोग इस धरती पे थे, उतना ही सौभाग्य हमारा भी है। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक को उच्चारण किया गया है। कलौ जनयिष्यमानानाम, कलौ जनयिष्यमानानाम, जो कलयुग में जन्म लिए, यानी भगवान जिस दिन अप्रकट हुए, यानी अपने स्वधाम गए, कृष्णे स्वधामोपगते, उस दिन से कलयुग प्रारंभ हुआ। वैसे देखा जाए कलयुग का प्रारंभ का ये दिन है, लेकिन फिर भी कलयुग और द्वापर युग का थोड़ा ओवरलैप लगता है, इसको संध्या, युग संध्या कहा जाता है। जैसे ये एक युग है, समझ लीजिए उस युग की अवधि को आप 10 भाग कीजिएगा, जो 10 भाग में 8 भाग जो है वो शुद्ध युग होता है, यानी उस कलयुग बनने पूरा कलयुग 8 भागों का है। जो पहले एक भाग और आखिरी का एक भाग जो है वो पिछले युग का जो आखिरी भाग होता है उसके साथ ओवरलैप रहता है, यानी समझ लीजिए कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, उसका 10 भाग करेंगे कितना होता है? 4,32,000 उसको 43,200 वर्ष होता है, यानी 43,200 वर्ष कलयुग का। अभी 8,64,000 वर्ष का 10 गुना करेंगे, 10 भाग करेंगे कितना होता है? 88,400 वर्ष होता है, 86,400 वर्ष होता है। तो 86,400 वर्ष और ये 32,200 वर्ष को जोड़ेंगे कितना होगा? जो भी होगा वो जो है उसको युग संध्या माना जाता है, जिन्होंने युग संध्या। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय का समय तो दिया जाता है 6:14 में सूर्योदय है, लेकिन 6:14 से पहले ही सूर्य का आभा दिखाई पड़ती है, लेकिन और 6:14 के बाद भी सूर्य का उदय अभी भी होता है, तो लेकिन फिर भी एक समय निर्धारित किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ये सूर्योदय का समय है। तो वैसे ही ये भगवान कृष्ण का जो अप्रकट होने का, यानी वो स्वधाम गए, तो वो जिस समय गए उस समय से कलयुग प्रारंभ हुआ, ये समझना चाहिए। तो कलयुग प्रारंभ जैसे हुआ, कलयुग के विषय में तो कहा गया है, आपको जानते हैं प्रथम स्कंद में पहला अध्याय में क्या कहा गया है, प्रायेण सभ्यालावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्य उपद्रुतः। अस्यत में 88,000 ऋषि जब बैठे थे नैमिषारण्य में, उनका चिंता क्या थी कि कलयुग के लोगों के हित के लिए वो बैठे थे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि 88,000 ऋषि बड़े चिंता में थे, कलयुग आ रहा है, इन लोगों को क्या क्या होगा, इससे हम सब यज्ञ करेंगे ताकि कलयुग के लोगों का दोषों को थोड़ा सा निवारण हो जाए और उनके दुखों को मिटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और सहस्र सहमासतः तयेकदात मुनयः प्रातःहुतहुताख्यः सत्कृतं सुतमासीनं प्रप्रच्छृतमादरा नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषे सौनकादयः सत्कृत सहस्र समात था। सहस्र समात का अर्थ क्या है? चारों साल से बैठे थे, उनको मालूम है अभी कलयुग आने वाले लोगों को बहुत परेशानी होने वाले हैं, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे। देखिए यज्ञ करने बैठे कुछ तो उसका फायदा नहीं हुआ, तब सब लोग बड़े दुखी होकर बैठे थे, तब सुत गोस्वामी आए, तो सुत गोस्वामी से भागवत सुने। तो सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हुए उन्होंने कहा, तत्र तत्रांजसायुष्मान भवदादिनिश्चितं पुंसाम एकांत श्रेय तन्न संस्तमर्हसि। आप हमको ऐसा एक रास्ता बताइए जिसके द्वारा सारे कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए। तत् पुंसाम एकांत श्रेय से प्रश्न पूछिए। देखिए एकांत श्रेय का अर्थ क्या है? एकमात्र श्रेय कर चीज क्या है वो बताइए, वो भी कैसे बताइए। तत्र तत्र अंजसायुष्मान, अंजसा, अंजसा का अर्थ है कि बहुत सरल तरीके से आप ऐसा इतना सरल तरीके से बताइए ताकि आप हर व्यक्ति समझ सके। हर व्यक्ति समझ सके का अर्थ क्या है, वो आगे कहते हैं कि ये जिन लोगों के लिए आप कह रहे हो, ये मत सोचिए कि केवल हम लोगों के लिए कह रहे हैं, हम तो बड़े ऋषि मुनि हैं, हम द्वापर युग से आ रहे हैं, लेकिन कलयुग के लोगों को नजर में रखते हुए आप एक ऐसा प्रवचन दीजिए ताकि उनको समझ में भी आ जाए और वो लोगों का उद्धार भी हो जाए। तो इसलिए पूरा भागवतम जो है खास करके कलयुग के जीवों के लिए है। व्यासदेव भी जब उन्होंने अपने दिव्य ट्रांस यानी समाधि में उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि आपन्न संस्कृति, उन्होंने देखा कि अनाथोपाशनम साक्षात भक्तियो मोक्षजे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्त संहिताम। व्यासदेव ने देखा कि इस कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए कोई और ही सही दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है उनको? केवल भागवतम ही कलयुग के लोगों को उद्धार करने वाली है। तो इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, भागवतम की रचना किया। लोकस्य मजानंतो, पहले लोगों को ये बात नहीं मालूम था, जो चीज नहीं मालूम था, जो चीज दिखा नहीं गया था, उस चीज को व्यासदेव ने भागवतम में रचना किया। तो इसलिए ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भागवतम कलयुग के लिए है। और नैमिषारण्य के ऋषियों का छह प्रश्नों में एक प्रश्न था कि धर्म काम शरणम गता, अभी कलयुग आ रहा है, आपने कृष्ण तो चले गए लेकिन उसके बाद कलयुग किसका शरण लिया। उस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण सुदामोपगते धर्म ज्ञान आदि हलो नष्ट त्रिषा मेषा पुराणार कोदनोदिता। तो जैसे कृष्ण का लीला ज्ञान की लीला जो है आस्त हो गया, तो क्या हुआ, भागवतम का उदय हुआ। तो भागवतम कौन क्या है, कृष्ण परिवर्तिता यानी स्वयं कृष्ण वापस आए, यानी किस रूप में आए, भागवतम के रूप में आए। इसलिए कहा गया है इधर कि कलौ जनयिष्यमानानां, कलयुग में जिनका जन्म हुआ और उनका क्या स्थिति है, दुख शोक तमोनुदम, दुख शोक तमोनुदम, दुख बहुत सारे दुखों का अनुभव करते हैं। और महत्वपूर्ण दुख क्या है जो अनुभव करते हैं, शोक। शोक का अर्थ क्या है, शोक का अर्थ है जो भूतकाल में जो घटना घटी है उसका स्मरण करते हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे तभी तो सुखी है, उनको दुख का अभी कोई कारण नहीं है। लेकिन कितना भी सुख सुविधा भी क्यों ना हो, पहले कुछ घटना घटी उसका स्मरण करते हुए अभी का सुख को भी अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा स्थिति है। इसलिए आप कलयुग में किसी को भी सुखी बनाने का प्रयास करोगे, कितना भी सुख दोगे, मान लो कि आपने 10 करोड़ रुपए भी दिया तो हाँ खुश हो जाए, तुरंत सोचेगा अगर ये मुझे 10 साल पहले मिला होता ना तो उसके देख के दुखी हो जाए, इसको शोक कहा जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति इस जगत से सुखी नहीं होता, तो कितना भी कुछ भी दो, कुछ भी मिल जाए, वो तुरंत तो दुखी हो जाएगा, क्यों वो सोचेगा अगर मिला होता तो। तो दुख का शोक तमोनुदम, ये क्यों उत्पन्न होता है, क्यों आता है, तमोनुदम तमस अज्ञान की वजह से दुख उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम वेदनोद यश, भगवान की जो यश, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका जो पुण्य है, सुपुण्यम वेदनोद यश, जो भी व्यक्ति इन भगवान की लीलाओं को स्मरण करता है तो क्या होगा, तो उनका ये दुख शोक से मुक्त हो सकता है। तो भगवान की साक्षात प्राकट्य लीलाओं में भगवान का दर्शन करना हो या उनकी उन लीलाओं को स्मरण करना हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक जगह प्रभु लिखते हैं, यशोदा मैं कृष्ण को खिला रही थी, मक्खन खिला रही थी, अनेकों अनेकों चीजें खिला रही थी, दूध पिला रही थी, तो उसमें और भगवान की विग्रह की सेवा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवान को भोग लगाओगे तो वही सौभाग्य हमको ये प्राप्त है जो यशोदामय अन्य गोपियों को, अन्य भुवाल वालों को प्राप्त है। लेकिन अंतर यह है कि उनकी चेतना विशुद्ध है, हमारी चेतना इतना शुद्ध नहीं। तो इस बात के ऊपर दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि भगवान का और विशेष अनुकंपा है। भगवान जब प्रकट होते हैं उस समय सेवा किसे स्वीकार करते हैं, केवल उन्हीं लोगों से सेवा स्वीकार करते हैं जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उनके पार्षद हैं। लेकिन वो अपने स्वधाम में जाने के बाद उनकी अनुकंपा और बढ़ जाती है, उनकी अनुकंपा और बढ़ जाती है। कहा गया अनुग्रहाय भक्तानाम, अनुग्रहाय भक्तानाम का अर्थ क्या है, भक्तानाम शब्द के द्वारा ये सूचित किया जा रहा है कि प्रकट समय के भक्त ही नहीं बल्कि भगवान का लीलाओं का अप्रकट लीला में भी या प्रकट होने पर बाद भी जो भी भविष्य में जितने भक्त आएंगे उन सब के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो भगवान का जो अनुग्रह है उनको उनका स्वभाव है, भले ही भगवान की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, वो सारी लीलाओं के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग भक्तों के ऊपर अनुग्रह करना, सारे जीवों के ऊपर अनुग्रह करना। जैसे एक बारिश है, बारिश क्या करता है, वो उनका काम है बरसना, या बादल उसका कार्य बरसना। बादल पत्थर के ऊपर भी बरसता है, समुन्द्र के ऊपर भी बरसता है, और जो बंजर भूमि के ऊपर बरसता है, और जो अच्छा खेती होता है उधर भी बादल बरसता है। लेकिन बादल ये नहीं सोचता है कि ये तो पत्थर है इसके ऊपर क्यों बरसूंगा, उससे तो फायदा नहीं होने वाला है, ये तो खारा पानी है समुद्र का, इसके ऊपर मैं क्यों बरसूंगा, कभी ऐसा नहीं सोचता है बादल। बादल का कार्य है बरसना। उसी प्रकार भगवान का एक ही कार्य है, वो क्या है, वो हमेशा कृपा बरसाते हैं। वो ये नहीं सोचते अरे ये तो गंदा व्यक्ति है, ये तो असुर है, ये तो इसका कोई संस्कार नहीं, इसके ऊपर क्यों कृपा दिखाऊंगा। यानी भगवान का कृपा जो है वो हेतु की नहीं होता है, अहेतु की होता है, क्योंकि भगवान सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम, अनुग्रहाय भक्तानाम करते हैं कि उन सब के ऊपर अनुग्रह बरसाते हैं। लेकिन भगवद गीता में कहा गया है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्कृतियों को नाश करने के लिए। भले ही दुष्कृतियों को नाश करते हैं, दुष्कृतियों का नाश करना भी अनुग्रह है, और भक्तों के ऊपर वो उनको आनंद देना ही उनका अनुग्रह है, क्योंकि भगवान कृष्ण को अनुग्रह करना ही मालूम है और कुछ मालूम ही नहीं, डजंट नो एनीथिंग एल्स। वो ऐसे लगता है कि भगवान जो है असुरों को दंड दे रहे हैं, लेकिन ये दंड देना भी अनुग्रह है। ऐसा देखा जाए दंड देना या उनको मारना वो ज्यादा अनुग्रह है। देखिए अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, कोई वो बच्चे हैं, दो तीन बच्चे हैं घर में, जो बदमाश बच्चा होता है माता पिता का ध्यान जो ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा रहता है, ज्यादा समय देते हैं, उसको मारते हैं। ऐसे ही जो भगवान जो है असुरों का जो वध करने की लीला जो है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखते हैं, वो भी अत्यंत में एक अनुग्रह है उनके ऊपर, उनको मार के ही भगवान को उद्धार करते हैं। फॉर एनी वन किल्ड बाई कृष्ण इज लिबरेटेड, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण ही एकमात्र वैसे परम पुरुष है जो जिनके हाथों से मृत्यु प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होता है। भगवान के अनेकों अनेकों अवतार है, इन सारे अवतारों में जब असुरों को मारते हैं उन असुरों का उद्धार नहीं होता है। भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो रामचंद्र ने रावण को वध किया, रावण का उद्धार नहीं हुआ। नरसिंहदेव आए हिरण्यकशिपु को वध किया, हिरण्यकशिपु का उद्धार नहीं हुआ। परार रूप में आए इनके और आके उन्होंने हिरण्याक्ष वध किया, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। केवल कृष्ण की हाथों से मरने के द्वारा ही उन असुरों का उद्धार होता है। इससे अनुग्रह भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनो यशः, सुपुण्यम व्यतनो यशः, सुपुण्यम भगवान की जो यश है उसको सुपुण्यम कहा गया है। सुपुण्यम का अर्थ क्या है? सबसे सुंदर या सबसे महान पुण्य को प्राप्त करता है। तो कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि अगर भगवान के यश या उनकी लीलाओं को स्मरण करेंगे ऐसा हो और जाएंगे पुण्य मिलता है, तो उसका जवाब अगले श्लोक में दिया जा रहा है। तो लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करना ही एकमात्र पुण्य कार्य है, बाकी सब पाप कार्य है। यानी भगवान के संबंधित जितने भी लीलाएं हैं उनको श्रवण करना, उनकी सेवा में लगे रहना, वो उसके अलावा कुछ भी हो सब पाप। कहाँ कहा गया है? श्रृण्वताम स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। आप बोलोगे ऐसे कैसे भाई? तो उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है, मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो कोई कहेगा हमारा घर का गृह प्रवेश है, तो वो कार्य करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एक ब्राह्मण के पास जाओगे, ज्योतिषी के पास जाओगे, बोलिए अच्छा समय क्या है, पहला पूछोगे अच्छा समय क्या है। तो अच्छा समय और अच्छा परिस्थिति देख के आप वो कार्य करोगे। अगर वो कार्य में ही अच्छाई होता कि आपको अच्छाई अच्छा समय ढूंढने की क्या आवश्यकता पड़ती? थोड़ा सा लॉजिकली देखिए, अगर जो आप ये कार्य करने जा रहे हो उसमें अगर अच्छा ही होता, अच्छा समय की क्या जरूरत है? अगर वो कार्य ही अच्छा है या कार्य ही बहुत सुंदर है तो वो कभी भी कर लेना चाहिए। तो इसलिए कहा गया नियमित स्मरणेन कालः, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, नाम जप करना, भागवत पढ़ना, इसमें कोई नियमित स्मरणेन कालः, यानी काल और परिस्थिति का कोई नियम लागू नहीं होता है। क्यों? पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की नामों को जप करना या भागवत को श्रवण करना वो अपने आप में पुण्य है, अपने आप में शुद्ध है, इससे कोई शुद्ध चीज की जरूरत नहीं। हम लोग कोई अच्छा समय को ढूंढते हैं अच्छा कार्य करने के लिए, लेकिन वो बुरा कार्य है इसके वजह से वो अच्छा समय की जरूरत पड़ता है, ताकि इसके अंदर बुराई थोड़ा कम हो जाए, दोष जो है कम हो जाए। लेकिन ठीक विपरीत इधर भागवत, जिस समय भागवतों को पढ़ते हैं, जिस समय नाम को जप करते हैं वो अच्छा समय, बाकी सब जो है वो खराब समय है। तो इससे कहा गया इधर कि अनुग्राह भक्तानाम सुपुण्यम पुण्य श्रवण कीर्तन, अपने आप में पुण्य, दैट इज ओनली इट इज ऑस्पिशियस इन इटसेल्फ। अगर कोई शुभ कार्य है तो शुभ कार्य के लिए आप शुभ समय ढूंढते हो, अगर ये शुभ कार्य था तो शुभ समय की क्या जरूरत है, कोई समय भी कर सकते हो। इसलिए आप देखते हैं किसी का विवाह होता है, कोई भी बहुत ही कार्य होता है, तो लोग क्या सोचते हैं? शुभ समय को ढूंढते हैं, अच्छा टाइम बताइए, अच्छा टाइम क्या जरूरत है? अगर अच्छा कार्य होता तो अच्छा कार्य का मतलब शब्द के हिसाब से मत लीजिएगा, वो भौतिक कार्य होने की वजह से तो उसके लिए कुछ उसके अंदर दोष स्वाभाविक तरीके से रहता है, तो वो दोषों का प्रभाव ज्यादा नहीं हो इसकी वजह से अच्छा समय ढूंढते हैं, चलो ये टाइम में कर लेंगे। लेकिन भागवतम ऐसा है कि अपने आप में शुभ होने की वजह से तो जिस समय भागवतम पढ़ते हैं वही समय शुभ है, उसके अंदर कोई अशुभता नहीं है। भागवतम के में क्या कहा गया है? नियमित स्मरण निकाला, जब जब के समय जपा के हिसाब से क्या किया गया है? कोई भी टाइम में कोई व्यवस्था में जप कर सकते, कोई भी टाइम में भागवतम कर सकते। कुछ लोग पूछते हमसे, प्रभु जी हमारे घर में मृत्यु हो गया
कि हम क्या जप कर सकते हैं क्या? अरे मृत्यु होता है ताकि आप लोगों को समय मिले ज्यादा जप करने के। तो कोई पूछते हैं प्रभु जी हमारा जो है अभी अपवित्र समय चल रहा है, क्या हम जप कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं? भगवान ने ऐसा योजना बनाया ताकि आप अपवित्र रहो भौतिक स्तर में और ताकि आप ज्यादा जप कर सकते हो, ज्यादा भागवत पढ़ सकते हो, ये सुविधा है। और कुछ तो कहते हैं बुढ़ा हो गया अभी कुछ नींद नहीं आता, वो नींद क्यों नहीं आता बुढ़ा अवस्था में, ताकि आप ज्यादा भागवतम पढ़ सकते हो। तो ये स्वाभाविक तरीके से भगवान ने ये जब जो बनाया है दुख ग्रामा शोक जिस चीजों को दुख समझा जाता है, किसी ने कहा प्रभु जी मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, अच्छा है प्रभु जी वो टाइम आप भागवतम पढ़ सकते हो, ऐसा परिस्थिति है मेरी पत्नी चली गई है, और अच्छा है वेरी गुड आपका देता है, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए जो भौतिक जगत स्तर में जो भी आप सोचते हो मेरा दुख है, भागवतम को अगर लेके आओगे वो अच्छा ही हो जाता है। तो सारे अशुभ चीजों को शुभ बनाने वाला भागवतम है। तो इसलिए भक्त के जीवन में कोई अशुभ करके कुछ होता नहीं है, नथिंग लाइफ में डिवोटी, अगर वो भक्त है तो उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं, क्यों? क्योंकि भागवतम का शरण लेता है, इट टेक शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसलिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सुपुण्यम, सुपुण्यम जो पाप के परिणाम को भी महान पुण्य के स्तर में पहुंचाने वाले श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम क्या विशेषता ये है। तो कलो जनिष्यमानां सार रूप में श्लोक का यही अर्थ है कि अगर परीक्षित मानस के मन में चिंता हुई थी, क्या चिंता हुई थी कि अरे भगवान तो प्रकट हो गए, अभी आगे आने वालों का पुण्य कैसे प्राप्त होगा या उनके जीवन में शुभ कैसे प्राप्त होगा, नहीं, भागवतम का शरण लेने के द्वारा वही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम के विषय में श्री कृष्ण परिवर्तिता हरिद्वांतोदितादित्य, श्री कृष्ण परिवर्तिता हरिद्वांतोदितादित्य का क्या है, जो कली के जो अंधकार है उसको द्वांत का उसको नाश करने वाला आदित्य है, नाश करने वाला सूर्य है, और कौन है, कोई और नहीं है, श्री कृष्ण परिवर्तिता, कृष्ण का ही पुनरागमन है, कृष्ण है कम अगेन इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये बात श्लोक में प्रकट है। हरे कृष्ण करते हैं अपना देह त्याग करने के लिए, लेकिन तो प्रभुपाद जी भीष्म देव के शरीर त्याग करने के विषय में लिखते हैं, भीष्म कभी भी शरीर त्याग के वो जा सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण का इंतजार कर रहे थे भीष्म देव। जैसे कृष्ण आए तो सारे भौतिक स्तर के शुभ लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो भीष्मदेव मकर संक्रांति का इंतजार नहीं कर रहे थे, कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो सारे शुभ लक्षण अपने आप प्रकट होते हैं, ये समझना चाहिए। तो भौतिक स्तर में शुभ समय शुभ दिन का इंतजार जो करता है भौतिक स्तर में वो करता ही रहेगा, भौतिक स्तर बहुत जगत को भगवान ने कहा मोक्षति अशुभात, इसके ऊपर स्टैंप डाल दिया अशुभा, कौन सा नवा स्तन में नवा अध्याय में भगवद गीता में क्या कहा गया है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मधुमोत्तम प्रत्यक्षावनम श्लोकों से मोक्षसी अशुभा, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभा, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभा, ये जगत को भगवान ने कहा अशुभा, यानी हमारी इस जगत में रहना अशुभ है और उसमें शुभ को ढूंढने जाएगा मूर्खता है, इस जगत में कोई शुभ चीज नहीं है। जो भागवतम जो है भगवान की धाम से उतरा हुआ है, भगवान की कृष्ण के लीलाएं जो है वो इस जगत के नहीं है, इससे वो एकमात्र शुभ है। इस जगत में शुभ चीज को ढूंढने जाना ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि ये जो काल है ये हमको बांध के रखा है, तो हमको जो बांध के रखता है उसके अंदर क्या शुभ है? एकदम बिल्कुल अच्छा समय, चलो अभी चोर के लिए अच्छा समय क्या है, तो दूसरे के लिए वो खराब समय है। इसलिए शुभ शुभदा इसके बारे में वक्र सामने में कहा गया है, जो तीन लक्षणों को पूर्ण कर सकता है वही चीज शुभ कहा जा सकता है। एक जो उसको पालन करने से, उसको प्राप्त करने से दिव्य लक्षण दिव्य गुण प्रकट होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, सबको आनंद प्रदान करना चाहिए, और तीसरा सबको आकर्षित करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एक दवाई को आविष्कार किया जिसको लेने से वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा था वो एक बार एक वो गोली ले लो आप जीवन में कई बीमार पड़ी पड़ोगे, अच्छी बात है। सब लोग दवाई लेने के लिए चले जाएंगे, उसके जैसा कोई अच्छा व्यक्ति होएगा ही। लेकिन अगर ऐसा दवाई अगर कोई किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टरों का क्या होगा? तो सबको आनंद देना चाहिए ना कार्य, डॉक्टर दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो केवल कृष्ण भक्ति ही एकमात्र चीज है जो ये तीन लक्षणों को पूर्ण करता है। क्या है वो? सबको आनंद प्रदान करता है, सबके अंदर दिव्य गुण को, और तीसरा सबको आकर्षित करता है। तो इस चीज को शुभ कहा जा सकता है, और बाकी चीजें जो है अशुभ है। मान लीजिए आपने बहुत सुंदर बंगला खरीदा, शुभ गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन जो आपसे ईर्ष्या करते हैं ईर्ष्या करता है उसके लिए वो अशुभ है, क्योंकि उसको आनंद नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो ये इट इज लाइक दैट। देखिए ग्रंथराज भागवत की शिल्पा